Can start.
Ready?
Yes, can start.
Okay.
Yeah.
सर हाँ कब तक रखेगा?
जब तक आप बोलेंगे.
हिरुप गोस्वामी का वैशिष्ट श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति मह्यं स्वपदान्ति आद्दानस्तीर्णै दन्तैरीदं जाचे पुनः पुनः सुमधुरूपदां भोलि भोलि सात् मम सात् जन्मनि जन्मनि. श्री कृष्ण लीला में जो स्वरूप मंजरी थी वे ही श्री गौर लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले रूप गोस्वामी परिकर थे. श्री रूप मंजरी राधिका जी की सर्वश्रेष्ठ सेविका है. राधा पक्षी हैं, श्री राधा पक्षी हैं. उनकी उनके भाव थाई भाव रसोल लाश रसोल्लास रति है और उनके लिए कहा गया है कि वो क्या है
श्री रूप मंजरी कराचे श्री रूप मंजरी कराचे तो पाद पद्म हम लोग ढूंढ लेंगे. पाद मर्जन मर्दन वाला श्लोक
पाद मर्दन से आरंभ है. पाद मर्दन
तांबुल अर्पण पाद मर्दन.
हाँ तांबुल अर्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसार आदि भी बृंदारण्य महेश्वरी सकपत तो स्वयंति जाप्रिया प्राण प्रेस सखी किलाद अपि
असंक
स्वरूप मंजरी मुखा तदासिकासन से स्वरूप मंजरी और उनकी अनुगत मंजरियों में एक विशेषता है कि राधा कृष्ण की किसी निभृत लीला निभृत निकुंज सेवा में भी ये बेखटके चली जा सकती हैं और उनकी सेवा कर सकती हैं. यहाँ तक कि कृष्ण यदि नंगे हैं राधा जी भी उसी अर्धनग्न अवस्था में हैं उस अवस्था में भी वहाँ पर प्रवेश करने का उनका अधिकार है और उनकी सेवा करने का अधिकार है. किंतु यह सौभाग्य उनसे श्रेष्ठ जो प्रिय नर्म सखियाँ हैं जैसे ललिता विशाखा इत्यादि का वह बिना स्वरूप मंजरी इत्यादि के पूछे वो उस स्थान में नहीं पहुंच सकती हैं. इनका इतना वैशिष्ट है फिर भी उन्होंने ऐसी सेवा को प्राप्त करने का साधन जीवों के लिए उपदेश नहीं किया किंतु श्री रूप मंजरी के में श्री रूप मंजरी ही श्री रूप गोस्वामी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण कर भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि विदग्ध माधव ललित माधव आदि ग्रंथों की रचना कर हम लोग जैसे जीवों का कल्याण किया है तथा यह बतलाया है कि हम उस रस परम रसमयी लाश मई रति वाले मंजरी भाव को प्राप्त कर सकते हैं, इन्होंने ही बतलाया है। इसलिए उनका यह काम जीवों के कल्याण के लिए है, वह अनुपम और अद्भुत है। हम लोग आज भी इसका अनुभव करते हैं, रूप गोस्वामी की दया को अनुभव करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी रूपानुग वैष्णव हैं या रागानुग वैष्णव हैं, दूसरे संप्रदाय के भी वैष्णव हैं, उनके चिर ऋणी हैं। यदि वे नहीं रहते तो नभादास के भक्तमाल के की टीका में किसी ने लिखा है, जंगकली रूप शरीर न भरत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन कपाट उधार, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज नीति, को जानत राधा माधव, को जानत से प्रीति। ओ, यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो ब्रज प्रेम की महानिधि स्वरूप ब्रज प्रेम के कपाट को कौन खोलता, किसका उसमें उस महानिधि स्वरूप ब्रज प्रेम में औपत्य भाव में किसका प्रवेश होता, कौन यह जानता कि मथुरा और वृंदावन क्या है, और कौन ब्रज की कृष्ण के प्रति भजन की रीति को कौन जानता, और कौन यह जान और राधा माधव उनके विशुद्ध प्रेम, गोपियों के औपपत्य भाव, इस ब्रज रीति को भला कौन जान सकता था। ये रूप गोस्वामी की कृपा है, जिनके प्रभाव से स्वयं लोग जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। नंबर दो, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे। श्रील कविकर्णपुर में रूप गोस्वामी के चरित्र का वर्णन करते हुए उनके विषय में यह श्लोक लिखा है, प्रिय स्वरूपे रूप गोस्वामी के जो प्रिय हैं, अथवा प्रिय स्वरूपे स्वरूप महाप्रभु के जैसे प्रिय परिकर हैं, वैसे रूप गोस्वामी ही उनके प्रिय हैं। प्रिय स्वरूपे अर्थात स्वरूप के अत्यंत प्रिय हैं, द्वैत स्वरूपे श्रीमन महाप्रभु के परम प्रेष्ठ है, प्रेम स्वरूप है। रूप गोस्वामी प्रेम के ही स्वरूप हैं, सहजाभिरूप है, स्वाभाविक मनोज्ञ स्वरूप वाले हैं, अर्थात उनके जो गुण हैं सब स्वाभाविक हैं, मुख्य रूप में और निजानुरूपे अपने अनुरूप हैं, महाप्रभु के अनुरूप, महाप्रभु के जैसे ये सब गुण हैं रूप है, इनका भी रूप महाप्रभु का के समान ही इनका भी रूप है। इस प्रकार अपने विलास स्वरूप रूप गोस्वामी प्रभु जी ने भक्ति रस शास्त्र का विस्तार किया था, उनके हृदय में प्रेरणा की थी, जिससे इन ग्रंथों को उन्होंने ग्रंथों की उन्होंने रचना की। कैसे किया उसके लिए कहते हैं, प्रयाग में महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा दी और उसमें उन्होंने कहा, पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हारे चखाई ते तार कही एक बिंदु। यह रस सागर आर पार रहित, सीमा रहित और अत्यंत गहरा है, मैं उसमें से तुम्हें एक बिंदु चखाने के लिए संक्षेप में कुछ बतला रहा हूँ। और पुरी में भी उन्होंने कहा था अपने परिकरों से, हे स्वरूप दामोदर, रामानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सौरभौम आदि, तुम लोग रूप के ऊपर में कृपा करो, जिससे यह हमारे हृदय के भावों को जानकर और उसे पूर्ण कर मेरा मनोभीष्ट पूर्ण कर सके। 4 चिलरूप को स्वामी नहीं श्रीमान महाप्रभु का महाप्रभु के अंतर स्वरूप महाप्रभु का अंतर स्वरूप ब्रजनंदन श्री कृष्ण है, सब प्रथम घोषणा की। यद्यपि राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, तपन मिश्र आदि भक्तों ने महाप्रभु के श्री कृष्ण स्वरूप, रसराज, महाभाव स्वरूप और सर्वभुज रूप आदि का दर्शन कराया था, परंतु वे चैतन्य महाप्रभु के आदेश के कारण स्पष्ट रूप से इस तत्व को जगत में प्रकाश नहीं किया। चिलरूप गोस्वामी ने ही इस तत्व को सब प्रकाश सर्वप्रथम पुरी धाम में भक्त समाज में स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा की है। रामानंद ने पूछा, तुम्हारे इस विदग्ध माधव के नंदी श्लोक का तुम पाठ करो। श्री रूप गोस्वामी सुनकर बड़े लज्जित हुए, किंतु बार बार कहने पर, महाप्रभु के कहने पर और भक्तों के कहने पर, उन्होंने लज्जित होकर के ही इस श्लोक का श्लोक को पढ़ा। अनर्पित चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल सांग सौभक्ति श्रियं हरिह पूर सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। यहाँ हरि ही पूरट सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। श्री कृष्ण ही राधा भाव कांति द्वारा दे दीप्यमान सचिनंदन गौर हरि हैं, इसको स्पष्ट रूप से बतलाया। इसे सुनकर महाप्रभु जी ने कहा, सुनि प्रभु कहे एई अति स्तुति हईल, सब भक्त कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ करिला सबाए श्लोक सुनाइला। श्रीमद सचिनंदन गौर हरि ने कहा, ओ ये अत्यंत अधिक स्तुति हुई, किंतु सब भक्तों ने श्लोक को सुनकर आनंदित होकर कहा, ओ रूप, तुमने हमें इस श्लोक को सुना करके हमें कृतार्थ कर दिया। दूसरी ललिता ललित माधव में इष्टदेव के वर्णन प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है नंदी मुख श्लोक के रूप में, निज प्रणयितांग सुधाम उदयम आप्लुवन जाक्षितौ किरत्य अलम उरी कृत द्विजकुलाधि राजस्थिति सलुंचित तमंततिर मम सची सुताख्य शशि वशी कृत जगन मना किमपि शर्म विनश्यतु। यहाँ तात्पर्य जो भूतल पे प्रकट होकर अपनी प्रणय रस सुधा का विस्तार किया, वे श्री कृष्ण स्वरूप ही द्विजकुल के सम्राट के रूप में सम्राट रूप में प्रकट होकर जगत के समस्त अंधकार रूपी तम को दूर कर जगतवासियों के मन को वशीभूत करने वाले हैं वे सचिनंदन, मेरा कल्याण करें। इसे भी सुनकर के महाप्रभु रोषाभास कह उठे, कहाँ तुम्हार कृष्णरस काव्य सुधा सिंधु, तार मध्य मिथ्या के नौ स्तुति क्षार बिंदु, राय कहे रूपेर काव्य अमृतेर पूर, तार मध्य एक बिंदु दिया छे कपूर। सुनकर के महाप्रभु ने कहाँ तुम्हारा ये कृष्णरस काव्य इतना उन्नत, मानो यह अमृत का महासागर हो, और उसमें किस लिए क्यों क्यों मेरी स्तुति रूप क्षार बिंदु उसमें मिला दिया। राय ने कहा, रूपेर काव्य अमृतेर पूर, रूप का काव्य तो अमृत का पूर्व घना अमृत है, उसमें से उसमें एक और कर्पूर का बिंदु दिया है जिसे उसमें रस में भी सुगंधी और भी अधिक स्वाद आ गया है। भक्त लोग सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं या राधा कृष्ण मिलित भाव हैं यह दिखलाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भक्ति तो थी परंतु भक्ति रस नहीं था। श्री रामानुज मध्वादि पूज्याचार्यों ने भक्ति भक्ति का साधन कर सिद्ध अवस्था में वैकुंठी ऐश्वर्य प्रेम की ही प्राप्ति की थी, परंतु श्रीमन महाप्रभु की प्रेरणा से श्री रूप गोस्वामी ने गोस्वामी द्वारा रचित उज्ज्वल लीन मणि भक्त स्वामी सिंधु उज्ज्वल लान मणि आदि ग्रंथों में भक्ति रस का विचार किया है। स्थाई भाव उसके ऊपर अनुभव सात्विक संचारी यथायोग्य मिलन से भक्ति रस होता है। इसकी अत्यंत अनुपम सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था, जिसको श्री स्वरूप गोस्वामी ने स्थापित इस जगत में स्थापित किया, वह है अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण की परकीय भाव से गोपियों की सेवा, उनकी इन गोपियों की सेवा की परिपाटी ही श्री चैतन्य का प्रचार करना ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था। श्रीमद् भागवत में ब्रज रमणियों के परकीय भाव का यथेष्ट वर्णन रहने पर भी लोक समाज और भक्त समाज में श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व परकीय भाव को घृणित इस उपासना को परकीय भाव से उपासना को घृणित समझा जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी पार्कीय भाव की उपासना देने के लिए जगत में आए थे। समर्पयितुम उन्नतो ज्वलरसांग स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसांग पर्कीय भाव, पर्कीय रस पर्कीय भाव, स्वभक्ति स्व श्रीमती राधिका के भीतर जो भक्ति के गूढ़ भाव हैं, अर्थात श्री राधा जी का भाव और उसकी श्री शोभा अर्थात मंजरी भाव, इसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। राधाया प्रणय महिमा, राधा के प्रणय महिमा इत्यादि तीन जो भाव हैं वो देने के लिए नहीं किंतु स्वयं आस्वादन के लिए, और इस मंजरी उपरोक्त मंजरी भाव को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विद्वत और भक्त समाज में इस परकीय भाव की प्रतिष्ठा कर चैतन्य मनोभीष्ट की स्थापना की है। भक्त रसामी सिंधु में शांत दास सख्य वात्सल्य रसों के साथ मधुर रस का संक्षेप में वर्णन किया गया है, क्योंकि दास सख्य और वात्सल्य रसों के पाशकों के लिए भी यह दुरूह है, उपयोगी नहीं है। दो उपयोगी नहीं है, इस मधुर रस के उपासक बिरले होते हैं। बहुत नंबर दो, बहुतों को मधुर रस में रुचि रहने पर भी उनके पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के संस्कार नहीं रहने से उनके लिए भी उपयोगी नहीं है। तीसरा, राग मर का वर्णन करना ही उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का विषय है। उसमें भी पारकीय भाव का, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अवांतर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ऐसे विविध प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी इस परमोच्च राग मार्ग का उपति भाव का रहस्य अपरिचित रहने से उनका चित्त वैधि भक्ति में ही अविष्ट रहने के कारण उनके लिए भी यह अनुपयोगी एवं दुरूह है। इसलिए स्वरूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु मधुर रस का विस्तृत संक्षेप वर्णन कर उज्ज्वल नीलमणि में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। अतः उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव विद्वत समाज में भाव की विद्वत समाज में प्रतिष्ठा श्रील रूप गोस्वामी का एक परम उन्नत उज्ज्वल परम उन्नत वैशिष्ट्य है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है श्रीमद्भागवत से उदाहरण लेकर इन श्लोकों को कि गोपियाँ श्रीमद्भागवत के राज पंचाध्यायी के में सर्वत्र ही समस्त श्लोकों में ही सभी श्लोकों में ही गोपियों को उपपति भाव का उल्लेख है। जैसे सर्वप्रथम सुश्रूयंत पतिन काश्चित, कोई गोपियाँ अपने पति की सेवा कर रही थी, वे बंसी की तान सुनते ही वहाँ से जिधर से कृष्ण की बंसी की ध्वनि आ रही थी उधर ही दौड़ पड़ी। दो वार्जमाणा ता वार्जमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी, उनके पतियों ने उनको निषेध जाने के लिए निषेध किया, बाधाएं दी, किंतु पतियों के पिता माता के या भाइयों के बाधा देने पर भी वह न रुकी और कृष्ण की तरफ में दौड़ पड़ी। तीसरा पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघते अंत अच्युतागता, इसका श्लोक नंबर भी देख करके और दे लेना। पति सुतान्वया अपने पतियों को, पुत्रों को, भाई और बंधुओं को सबको छोड़ करके कृष्ण की तरफ में दौड़ पड़ी। चार असामहोचरण रण जुषाम हम श्याम वृंदावने किम गुलमलता श्रीनाम जस दुस्तजन सजन अर्ज पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवेंग सुत भीम भेज्ञा। यहाँ परम भक्त कृष्ण के परिकर उद्धव जी कह रहे हैं ओह वृंदावन में मैं कहीं भी गुलम या लता के रूप में जन्म ग्रहण करूँ, जिससे गोपियों की चरण की धूली जबकि वे अभिशाप के लिए जा रही हों तो हमारे मस्तक पर पड़े। क्यों जब दुष्ट जो जिसका छोड़ना परम कठिन था उस आर्यपथ को अर्थात पति इत्यादि को छोड़कर लज्जा पति को लज्जा को लोक लज्जा को वृद्धजनों के की आज्ञा का अनादर करके भी मुकुंद के श्री चरणों की ओर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण के चरणों का भजन किया, उनकी सेवा की थी, जिसको श्रुतियां भी नहीं पा सकी। न पारे हम निर्वध्य संयुजा ससाधु कृत्या विभुजा भी माँ दुर्जर गृह श्रृंखला। यहाँ इस श्लोक में कृष्ण ने स्वयं ही कहा है माँ भर्जन दुर्जर गृह श्रृंखला, गृह की श्रृंखलाओं अर्थात पति इत्यादि के सेवा और सब दूसरी जो घर का की नाना प्रकार की श्रृंखलाएँ हैं उन सब को तोड़ फोड़ कर और वे कृष्ण की तरफ में, कृष्ण की तुम लोग मेरी सेवा तुम लोग किया, मैं इससे ऋण ब्रह्मा का जीवन पा करके भी मैं पूरी नहीं हो सका। इस प्रकार देखा जाता है शास्त्रों के आधार पर, विशेष करके श्रीमद्भागवत के आधार पर यही प्रमाण मुख्य है कि गोपियों का यह उपपत्ति भाव अत्यंत पवित्र था। जहाँ पर साधारण यहाँ पर यह विशेष विचारणीय है जहाँ पर लौकिक भाव है अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों इस लोक की हैं, इस समाज में उनका अपने पति को छोड़ करके जाना पर पुरुष की सेवा करना यह अत्यंत घृणीय और नर्क में जाने योग्य है। किंतु जहाँ पर कि अखिल रसामृत सिंधु सर्व ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण ही जहाँ पर नायक हैं और उनकी शक्तियाँ, उनकी स्वरूप शक्ति और उसके प्रकाश जो गोपियाँ हैं वहाँ पर दोनों का मिलन कदापि घृणित या नरक योग्य नहीं हो सकता है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ही कहा गया सता निजरूपतया कला भी
श्रिया कांता कांता है, श्रिया कांता कांता
हाँ उसमें और आगे कला भी रूप तया कला भी
रूप तया कला भी
निवसत्य
निवसत्य सत्यम लक्ष्मी सहस्त्र सेवा। मैं इसको देख लूंगा गुरुदेव।
हाँ वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध,
मैं देख लूंगा।
निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म गोविंदमादि पुरुष संतम। दूसरी बात युक्ति के आधार पर भी, युक्ति के आधार पर भी हम देखते हैं तो कृष्ण द्विजाति थे अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों को द्विजाति कहते हैं। विवाह से पहले उनका उपवीत ग्रहण करना अवश्यंभावी होता है। कृष्ण ने ब्रज में कभी भी उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, अतः वहाँ पर विवाह की बात तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात विवाह करने के बाद में पत्नी पति के साथ में पति के घर पर चली जाती है और वहीं रहती है, उसे पुत्र इत्यादि संतति पैदा होती है। किंतु श्रीमती राधिका जी का ऐसा नहीं सुना जाता कि वे सब समय नंद भवन में रहती थी कृष्ण के समीप, बल्कि हम ऐसा देखते हैं किसी कार्यवस्त सेवा के लिए रसोई रसोई बनाने के लिए तो जाती थी किंतु फिर वहीं वहाँ से लौट जाती थी जावट में या बरसात में लौट जाती थी और कृष्ण को द्वारकापुरी में अपनी 16,108 रानियों से प्रत्येक के 10-10 पुत्र एक कन्या थी। यहाँ पर इतनी यदि गोपियाँ थीं, राधा जी थीं, उनसे क्या एक भी पुत्र नहीं उत्पन्न हो सका यदि विवाह हुआ था। इन सब पर हम जब देखते हैं, विचार करते हैं, तो यह ठीक प्रतीत होता है कि विवाह नहीं हुआ है। और भी श्री लरूप गोस्वामी ने भक्ति के विभिन्न स्तरों का जिस प्रकार वर्णन किया है, वैसा वर्णन आज तक किसी भी ने नहीं किया है, न किसी ग्रंथ में देखा जाता है। आदर श्रद्धा से लेकर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग अनुराग भाव, महाभाव, रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव,
मादन
मोहन महाभाव, मादन महाभाव इत्यादि का अपूर्व विश्लेषण किया है। और इनकी एक एक स्तर की एक एक परिभाषा दी है, जो कि अन्यत्र कहीं भी किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि हाव भाव, हेला किल किंचित, दिव्योन्माद, चित्र जल्प आदि भावों की भी परिभाषा उन्होंने दी है। श्री रूप गोस्वामी से पूर्व भक्ति रस की इतनी सुंदर और प्रमाणित विवेचना और कहीं भी उपलब्ध नहीं होती या दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जन, भक्ति चित्त वृत्ति उन्मुखी एवं श्रद्धा, कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि को छोड़कर भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति ही श्रद्धा है। इसका स्वरूप लक्षण श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति है। कृष्ण की सेवा वासना को श्रद्धा कहते हैं। और उसका बाह्य लक्षण है शरणागति। साधन भक्ति किसको कहते हैं, कृति साध्या भवेत साध्य भावा, स्वसाधन अविदा नित्य सिद्धस्य भाव संग प्राकट्यंग हरिदि साध्यता। अर्थ लिख लें। भाव किसको कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुर जान सुसाम्य भाग रुचि भी चित्तम आश्रण्य किद सौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, बद्ध जीव मिश्र सत्व का है, मुक्त जीव शुद्ध सत्व है। कृष्ण का शरीर, ब्रज का कोई सब कुछ, ये सब चीजें विशुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, विशेष आत्मा कृष्ण में, उनके वहाँ आश्रय जाति परिकरों में दास्य सख और वात्सल्य और मधुर, इनमें से जो जिनके भावों का हम अनुसरण कर भजन कर रहे हैं हरस में, उनमें राधिका जी का भाव सर्वोत्तम है। उनका जो कृष्ण के प्रति सेवा की वासना है वो विशेष आत्मा है। विशेष आत्मा प्रेम सुजन सुसाम्य भाग, जिस प्रकार से सूर्य है वो प्रेम है, उसके समान उसकी अंशु, अंशु माने किरण, प्रेम रूप सूर्य की किरण स्वरूप यह भाव है। रुचि चित्तम आसीन, जो रुचि के द्वारा चित्त को अत्यंत कोमलीकृत कर कर कोमल कर देता है, उसको भाव कहते हैं या रति कहते हैं। इसमें रागव चंद्रिका में ये विशेष रूप से दिया गया है, उसको देख लें कहीं भूल ना हो जाए। प्रेम सर्वथा ध्वंस रहितम यद्यप ध्वंस कारणम सद्भाव बंधनम जुनुषा प्रेमा निगच्छति। सर्वथा ध्वंस नहीं योग्य होने पर भी ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी उसका ध्वंस नहीं है, ऐसे सद्भाव बंधनम जूनो, राधा कृष्ण जुगल का परस्पर जो भाव बंधन है उसको प्रेम कहते हैं। दूसरा अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति इति उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव उद्धव नारदे। विष्णु में अर्थात कृष्ण में अनन्य ममता हो और वह ममता प्रेम संगत हो, भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद आदि भक्तों ने भक्ति की यही परिभाषा दी है। सम्यक मनसरणितो स्वान्तो ममता अतिशयांकिता भाव स एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जो भाव भली भांति अच्छी प्रकार से हृदय को कोमलीकृत कर तथा उसमें ममता लाकर ला देता है, एवं जो अत्यंत घन संद्रात्मा घन आत्मा स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, उसको भाव कहते हैं। इसका अर्थ देखिए, पंडित लोग बुधई विद्वान व्यक्ति इसी को प्रेम रस रसज्ञ व्यक्ति इसी को प्रेम कहते हैं। इस तरह से हम रूप गोस्वामी के अनंत वैशिष्ट्यों में से हमने इन कैक कणों को स्पर्श करने का प्रयास हमने किया है। अगाध समुद्र की दो एक कण भी कण के समान हम महासागर के तट पर खड़े होकर के उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भाई होकर